निफाक के बारे में
सबसे पहले इसके लुगवी और डिक्शनरी के माना जाने। इसके लुगात में जो माना जिक्र किए गए हैं वो इस तरह से हैं। कदीमी तरीन लुगत मौजमल मकाई से लुगा में जिक्र है कि इनकता व शईन व ज़हाब ही, इनकता शईन व ज़हाब ही, एक शय का मुनक़ते होना और चला जाना। शय का यानी मुनक़ते होना यानी जुदा होना और चला जाना। बाज़ जगहों पर इसका जिक्र किया गया है मदा व नफदा, एक शय वजूद में आने के बाद ख़त्म हो जाए। और इसी से बाज़ ने जिक्र किया हुआ नफादुन फी जरियानिन, कि एक शय जारी हुई फिर ख़त्म हो गई, यानी एक शय हासिल होने के बाद वो ख़त्म हो जाए और इख्तिताम पज़ीर हो जाए, इसे नफ़ से ताबीर करते हैं। और ये माल अमवाल के भी खर्च करने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे इनफाक। इनफाक मतलब होता है किसी ने माल राह इलाही में खर्च किया, यानी माल आने के बाद उसे अपने पास से ख़त्म कर डाला। इसमें माल की ज़िंदगी है दीन इस्लाम की नज़र में। और अगर कोई वाकई दीन इस्लाम के ऊपर ईमान रखता है तो वो इस बात को कबूल करें कि माल आ जाए, आने के बाद उसको हलाल तरीके से खर्च करके ख़त्म कर दे, तो इसमें माल की ज़िंदगी है। और माल हलाक हो जाता है, तबाह हो जाता है, जब उसे जम करके इंसान रखी रखे। हाँ, बाज़ुकात इसलिए जम करता है ताकि कोई और किसी और अमर में वो उसे खर्च करके ख़त्म कर दे, मसलन घर खरीद के ख़त्म करे, गाड़ी खरीद के ख़त्म करे। तदबीर करने में ऐब नहीं है, लेकिन माल को बचा के रखना ये उसकी मौत है, और माशरे इससे हलाकत का शिकार भी होते हैं। बस लुगवी माना आपने जान लिए कि माल के में भी यही है। मुनाफिक भी उसी को कहते हैं जिसके पास एक दीनी बात या हक बात आई और आने के बाद उसने अपने वजूद में उसे ख़त्म कर दिया, अपने बातिन में उसे ख़त्म कर दिया। जो अपने बातिन में ख़त्म कर देता है उसको कहते हैं मुनाफिक। लिहाजा मुनाफिक का मतलब ईमान और दीन के आने के बाद उसका इख्तिताम है। काफिर तो वो होता है कि वजूद में आया ही नहीं, यानी उसने इकरार ही नहीं किया दीन इस्लाम का या ईमान का, इकरार ही नहीं किया, वो काफिर है। मुनाफिक वो है कि जो इकरार करता है और इकरार करके वजूद देने के बाद अपने बातिन में ख़त्म कर डालता है, लेकिन ज़ुबान से इसका इकरार नहीं करता। लिहाजा मुनाफिक का या निफाक या इसी तरह से सुरंग को भी अरबी ज़ुबान में इसी से ताबीर किया जाता है, क्योंकि एक सुराख से दाखिल होते हैं तो वो फिर दाखिल होने के बाद उसका वो सफ़र ख़त्म हो जाता है और दूसरे सुराख से निकल जाता है। यहाँ पे आए अब हम कुरान करीम की निगाह में मुनाफिक को देखें। सबसे अहम तरीन चीज़ जिसकी अशद तरीन हमें ज़रूरत है और उससे गफलत जो है बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक, यानी जितना उसके बारे में इंसान एहसास ख़तर करे या जितना इंसान उसके बारे में घबराहट का शिकार हो वो कम है। और वो ये बात है कि मुनाफिक फ़कत और फ़कत वहाँ पर ये मरज़ पैदा होता है जहाँ पर इस्लाम या ईमान हो, ये काफ़रों में मरज़ नहीं पैदा होता। यानी मुसलमान मुनाफिक बनता है, मोमिन मुनाफिक बनता है, ये पहली चीज़ है। यानी बाज़ अमराज़ होते हैं वो बाहर से आते हैं, ये वो मरज़ है कि जो मुसलमानों के दरमियान से फूटता है, जो अहले इस्लाम के अंदर से फूटता है, ये वो मरज़ है कि मोमिन इसका शिकार होता है, मुस्लिम शिकार होता है। ये बाहर से मरज़ नहीं आता, जैसे काफिर है मुशरिक है, ये बैरूनी अमराज हैं। लेकिन मुनाफिक कौन होगा? जो मुसलमान होगा बस वही मुनाफिक हो सकता है, यानी जो मुसलमान हुआ ही नहीं है वो मुनाफिक हो ही नहीं सकता। मुनाफिकत का ताल्लुक ईमान और इस्लाम की दुनिया के अंदर से है, لہذا منافق اندرونی اور باطنی دشمن شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، منافق سے ضرر رسان، نقصان دہ اور خطرناک ترین دشمن وہ کوئی نہیں ہے، یعنی دین اسلام کو بیرونی دشمنوں سے خطرہ نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہ لوگ جانے پہچانے افراد ہوتے ہیں، لوگ بچ جاتا ہے، مومن بچ جاتا ہے، منافق سے خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے، لہذا منافق نہیں پہچانا جاتا۔ منافق کی پہچان آرام سے نہیں ہوتی، کیونکہ گھر کا بندہ وہ ہوتا ہے، وہ آپ کے آس پاس، یعنی امام علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق انہوں نے منافق کی جو وضاحت نہج البلاغہ میں کی ہے، فرماتے ہیں کہ نہ مشرق سے کوئی ڈر ہے اور نہ کافر سے کوئی ڈر ہے، اصل خطر ڈر ہے منافق سے، کیونکہ کرتا وہ ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ بڑے امام کے خوبصورت جملے فرماتے ہیں، وہ کرتا انجام وہ دیتا ہے جسے تم اچھا جانتے ہو، جسے تم محبوب سمجھتے ہو، اور اس کے اندر وہ ہوتا ہے جس سے تم دشمنی رکھتے ہو۔ مثلا ایک شخص نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زیارات کرتا ہو، عزاداری کرتا ہو اور مجالس میں شرکت کرتا ہو، اب ہم اسے دوست سمجھتے ہیں، انہیں اچھا عمل قرار دیتے ہیں، انجام دیتا ہے وہ اسے، یعنی انجام وہ دیتا ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو، یعنی مسلمان جسے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باطن میں وہ ہوتا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، جیسے قیامت کے اوپر صحیح عقیدہ نہ ہونا، اللہ کو صحیح نہ ماننا وغیرہ وغیرہ، لہٰذا یہ ہے منافقت کا۔ اچھا، اب اس سے بھی ایک خطرناک چیز جو کہ ہمارے اندر غفلت کا شکار ہو گئی ہے، اس سے بھی خطرناک چیز، کیونکہ ایک تو یہ بات تھی کہ یہ ہوتا ہمیشہ اہل اسلام میں ہے، باہر نہیں ہوگا، مومنین میں ہے، باہر نہیں ہوگا، اور نمبر دو گھرانے کے بندے ہوتے ہیں، یعنی آپ آس پاس کے فرد ہی یا ہم خود ہی، پتہ ہی نہیں بعض اوقات لگتا، چھپا ہوا یہ ایک مرض ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آشکار ہو جاتا ہے۔ ان سے بھی خطرناک ترین چیز وہ یہ ہے کہ ہم منافق سمجھتے ہیں ماضی کے لوگوں کو، جبکہ یہ مرض تا قیامت رہنے والے امراض میں سے ہیں، لہذا یہ مرض ختم نہیں ہوتا، یعنی بالفاظ دیگر 1400 سال پرانے منافقین کی بجائے 2020 جنوری فروری کے منافقین کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ اگر ہم نے یہ فروری کے مہینے کے جو منافقین ہیں ان کی بات نہ کی تو ہم کبھی بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ قرآن کریم نے یہ بتانے کے لیے آیات نازل نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے بندے تھے، بلکہ قرآن نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ تم اپنے آپ کو جانو کہ آیا تم اسی طرح کے شکار ہو یا نہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے نماز کے لیے کھڑے ہونے میں سستی دامنگیر ہوتی تھی۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 54 میں بھی ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا، تو سستی سے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ صفت اگر پائی جاتی ہے جان لے منافق ہے انسان، انسان کے اندر، یعنی نماز پڑھتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھاری پن کا احساس ہوتا ہے، جان لیجیے منافقت کی وجہ سے ہے، اور پیچھے کوئی وجہ۔ مثلا اگر ایک بندہ ہے وہ بستر سے اٹھ کے صحت مند تندرست انسانوں کی طرح کام نہیں کرتا یا چل نہیں سکتا تو فوراً ہم کہتے ہیں اسے بخار ہے اس لیے یہ کام نہیں کر رہا، یا چونکہ یہ مرض ہے اس وجہ سے کام نہیں کر رہا۔ ادھر اگر اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھنا اسے بھاری لگتا ہے، تو سمجھ لیں منافقت کا مرض اسے لاحق ہے، وہ منافق ہے اس اعتبار سے۔ پھر ایک اور صفت ہے یراؤن الناس، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا۔ اب یہ بندہ خود ہی جان سکتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کا وظیفہ نہیں ہے یہ ریاکاری کرتا ہے، اللہ کی ذات تو جانتی ہے، لہذا اگر کوئی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک عمل انجام دیتا ہے منافق ہے۔ تیسری صفت، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافقین اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن قلیل، اگر کوئی اللہ کا ذکر قلیل کرتا ہے یہ منافقت کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا پھر وہ کہاں پر ہے، پھر تو اس کی منافقت بہت ہی شدید ہے۔ اگر کوئی اصلا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی منافقت بہت شدید ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ ظاہری طور پہ اللہ اور اس کے رسول اور آئمہ اہل بیت کا نام لیا تو ان کے ساتھ محشور ہو گیا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یا خواب میں ہمیں سفید کپڑے پہنے ہوئے اپنے مرحوم نظر آ جائیں تو وہ بڑے خوشحال ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ خوابوں اور خیالوں کے اوپر قبریں نہیں ہیں، خوابوں اور خیالوں پہ قیامت نہیں ہے۔ وہ ان امراض سے جو صحت مند ہے اور جو صحت مند نہیں ہے، اس طرح سے وہاں تقسیم ہے، وہاں پہ بیماروں کے ساتھ صحت مند کو ملایا نہیں جائے گا، وہاں پہ بیماروں اور صحت مند میں واضح تفریق کی جائے گی۔ مرض نفاق اور ایمان کی صحت، یہ دو قابل جم نہیں ہیں قیامت کے دن، برزخ میں قابل جم نہیں ہیں۔ لہذا یہ ایک بات ہو گئی کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھاری پن محسوس ہوتا ہے، بڑی مشکل سے جاتا ہے، تیز تیز پڑھ کے بس فوراً ہی نکلنے کی کوشش کرے گا، یہ مریض ہے، اس لیے اسے نماز میں لذت محسوس نہیں ہو رہی۔ اچھا، اسی طریقے سے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرے۔ نمبر تین، اللہ کا ذکر قلیل کرے، کرے اللہ کا ذکر لیکن قلیل کرے، یہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ولا سورۃ توبہ آیت نمبر 54 میں، ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالی، وہ نماز کی طرف نہیں آتے لیکن سستی برتتے ہیں۔ ولا ینفقون الا وهم کارہون، راہ الہی میں پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیں گے۔ مثلا ابھی پہلی بات ہے، اعتراضات دنیا میں کار خیر اور کار دین، دینی کاموں میں پیسہ خرچ کرنے پہ اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی پیسہ لگایا ہی نہیں، پیسہ جیب سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ اگر پیسہ جیب سے نہ نکلے تو سمجھ لیں یہ منافقت کی وجہ سے ہے، یعنی دین الہی یا خدمت خلق یا اپنے واجبات اور حقوق ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں نکلتا۔ لیکن یہاں پر جو سورۃ توبہ میں منافقت کا ذکر ہے، وہ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین الہی کی راہ میں پیسے کا نہ نکلنا ہے۔ مثلا ایک شخص کو تنخواہ ملتی ہے اور ساری اپنی آل اولاد پہ لگا دیتا ہے اور دین الہی کے لیے ایک ذرہ نہیں رکھتا، یہ نفاق کی وجہ سے ہے، اس کے اندر ایک مرض نفاق پایا جاتا ہے۔ بس یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ منافقت کا مرض، وہ مرض ہے ایک، اور وہ مرض کسی میں بھی پایا جائے اس کی زندگی ویسی ہی ہوگی جیسا قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیان کیا۔ مثال کے طور پہ منافقین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ میدان جہاد سے فرار کر جاتے تھے۔ ہم فرض کرتے ہیں اگر ہم اسی میدان جہاد میں ہوتے تو ہم تلوار چلا رہے ہوتے، اگر کوئی کہے کہ ہاں تلوار چلا رہے ہوتے تو پھر یہاں پہ جو اس سے سخت محاذ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے محاذ ہیں، وہاں پر تو وہ گر جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے بڑے محاذ میں وہ تلوار چلا رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ ظالم کو ظالم کہنا اور ایسی جگہ پہ کہنا جہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں تو اسے مشکل پیش آ جاتی ہے، تو ظالم سامنے اور اس کے اوپر تلوار چلانا ہو تو کیسے وہ آگے بڑھ کے چلائے گا۔ لہذا یہ باتیں صرف ان لوگوں کی مذمت کے لیے نہیں، دیکھیں کہ میرے اندر بھی یہ حوصلہ پایا جاتا ہے یا میرے اندر حوصلہ یہ نہیں پایا جاتا۔ نہیں پایا جاتا سمجھ لیں کہ یہ نفاق کی وجہ سے ہے۔ لہذا نفاق دین اسلام کے اندر رہنے والے لوگوں میں مرض ہے، بیرونی مرض نہیں ہے۔ اور اس کی قرآن کریم نے تو بہت تفصیلی اس کی اوپر بات کی ہے، مثلا سورہ نساء آیت نمبر 61 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، कि जब उनको कहा जाता है अल्लाह और उसके रसूल जो अल्लाह ने नाजिल किया है या और उसके रसूल की तरफ अल्लाह ने जो भेजा है उसकी तरफ आओ, तो आप मुनाफिकीन को देखेंगे कि रसूल से ही रुख फेर के चले जाते हैं, यानी हुज्जत इलाही की इताअत की तरफ नहीं आएंगे। या बाज़ जगहों पे हैं कि वो अल्लाह से दुश्मनी करते हैं, बालफाजरी कर आज की ज़ुबान में बात की जाए। आप किसी को कहें कि आइन दर्स में शिरकत कर लें, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की या कुरान की या दीन इलाही की कुछ बातें पढ़ लें, सीख लें। मज़ा किसी भी मुल्क में हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, अरब अमारात या यूरोप का कोई मुल्क हो, क्योंकि हो यार थोड़ा दीन सीख लें। वो कहेगा यार ये कौन मौलवियों की बातें सुने और कौन है, बस उन्हें अपने दौर पे लगे रहने दो। ये कामिलन मुनाफिक है इंसान जो कुरान से भागे, जो दीन की पर गौर व फिक्र करने से भागे। बाल्फाज़ दीगर, अगर किसी के 24 घंटे गुजरते हैं और उसने 24 घंटों में ना कुरान का मुतालिया किया, ना नमाजों को अदा किया, अच्छा ना वो दीन और इल्म इलाही की तरफ आया, ना उसने अल्लाह की राह में कोई माल खर्च किया, ना अपनी किसी सलाहियत को राह इलाही में दिया, तो 100% यकीन कर ले कि वह मुनाफिक है। और इस मरज़ निफाक की वजह से ये नहीं हो रहा। यानी किसी को महफिलों में तो बड़ा मज़ा आए, नमाज में मज़ा नहीं आता। किसी शख्स को भाग दौड़ सैर व तफरी में तो बहुत मज़ा आए, लेकिन मस्जिद जाने में उसके पाँव में इस तरह जैसे बेड़ियाँ पड़ गई हों। किसी शख्स को कुरान के सामने बिठाया जाए पढ़ो, तो उसने मुर्दों के लिए रखा हुआ है और उससे बेजारी का एक इजहार उसके चेहरे से आया हो रहा है, मुनाफिक है। और फिर वो इजहार ऐसा करे जैसे बड़ी मोहब्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, नाम ले तो आंखों से आंसू जारी हो जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जिसका कल्बी ताल्लुक है उसे करबला से मोहब्बत है, उसे तलवारों की झंकारों से मोहब्बत है, उसे अल्लाह की राह में खून के गिरे हुए होने से मोहब्बत है। वो इससे मोहब्बत करेगा कि उसके फर्जंद, उसके लाल, उसके अजीज अकरबा राह इलाही में इसी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं जैसे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम हुए। इससे मोहब्बत करेगा वो यजीद और उसके तस्करे से मुतनफ़र होगा। अभी तो हमारे यहाँ हालत ही अजीब है कि जालिमीन और जो हजरात हैं हाकिम हजरात जिनमें वाज़ यजीदी झलक मौजूद है आमाल के अतबार से, उनकी तारीफ़ों और उनकी हिमायत से पीछे ही नहीं हटते। ये मुनाफिकत के अलावा किसी शय से ताल्लुक़ नहीं रखता। कुरान की बहुत तफसीली ये मौजू है, इसके ऊपर मज़ीद इंशाअल्लाह ताला किसी और वक्त गुफ्तगू करेंगे। मसलन एक और मैं सिफत आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ ताकि हम मुनाफिक पहचाने। अगर अपने अंदर निफाक है तो फौरन उसको दूर करने के लिए इलाज ढूंढें, भाग दौड़ करें। आसपास अफराद यानी मुनाफिक हमारे ही अपनी ज़ात, अपने वालदैन, बहन भाई, अजीज़ अकरबा, हमसाए या जो मस्जिद आते जाते हैं, इन्हीं में मुनाफिक हैं, इन्हीं में मोमिन हैं। कोई बाहर नहीं ढूंढ रहे हमने, कोई 1400 साल पुराने उसको नहीं, आज हमारे ही माशरे के अंदर इसको हमने वो देखना है। अच्छा, इसी के साथ सूरह तौबा आयत नंबर 67 को भी देखें। उसमें है अलमुनाफिकून वलमुनाफिकात बअदुहुम मिन बअदिन यअमुरून बिलमुनकर वयनहौन अनिल मअरूफ वयक्बिदून अयदीहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून। यानी मुनाफिकीन और मुनाफिकात, ये जो दो बंदे हैं मुनाफिकीन और ख्वातीन में मुनाफिकात, इनमें से बास दीगर बास को मुनकिरात का हुक्म देंगे, आओ यार गाने बजाओ, आओ मिलके गाने गाते हैं, आओ रक्स व सुरूर करते हैं, आओ बैंकों से सूद लेके सैर व तफरी के लिए निकलते हैं, आओ फलां जालिम के पास जाके चापलूसी करके ताल्लुक कायम करते हैं ताकि अपना मफाद निकाला जाए। मुनकिरात की तरफ बुलाते हैं बास दीगर बास को। वयनहौन अनिल मारूफ, नमाज के लिए कोई आए सर पर टोपी रख ले, दाढ़ी रख ले, ओके कहो ये क्या मौलवी बन गए हो। और ठीक है दीन होना चाहिए लेकिन मौलवी थोड़ी बनना है। दाढ़ी कटवाने की तरफ आएंगे, गरबी स्टाइल को पसंद करेंगे, उससे मुशाबे होना चाहेंगे, महफ़िलों में खूबसूरत दिखाई देने के लिए ख़वातीन के पर्दे जो हैं वो सर से खुद ही झटक के नीचे आ जाएंगे, बाद में कहेंगे पता ही नहीं लगा, हमें ख्याल ही नहीं रहा। ज़ीनत गैर मर्दों के लिए करेंगे मुनाफिकत है, दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। स्याहकारी अपने आमाल में और अपने नफ्स के अंदर आलूदा करके जब ज़ाहिर किया जाए और मोमिन बना जाए, फिर नियाज़े दे के नामे हुसैन ले के फिर मोमिन बनने की कोशिश करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी कबूल कैसे करेंगे? मुनाफिकत का आशकार मुजाहरा और उसके बाद मोमिन बनने की कोशिश भी। लिहाजा वो ख़वातीन का इधर तस्करा हुआ, बोल मुनाफिकात, वो मना करेंगे मारूफ की तरफ आने से, और ऐसा है मस्जिद जाने से बच्चे को रोकेंगे, मौलाना से ताल्लुक़ कायम करने से रोकेंगे, पता नहीं जॉब ना चली जाए, पता नहीं क्या पढ़ा दे, पता नहीं दीनदारी कहीं खुदा ना खास्ता ना बन जाए। वो यकबदून ऐदियहुम, पैसा नहीं निकलेगा उनसे। और ये तो तजर्बे की बात आप इंसानों में देखेंगे, जिसके पास पैसा होता है उसी के पास से पैसा नहीं निकलता, ये अल्लाह की तौफीक है किसी पे, क्योंकि पैसा देने के लिए वो जेब में हाथ डालता है, 70,000 शयातीन चिपक जाते हैं कि तुमने नहीं निकालना, और हज़ार वसवसे डालेंगे कि क्या करने बैठ गए हो, पता नहीं क्या वो पैसे का करे, धोखाबाजी होती है, सारे लोग धोखा देने वाले हैं, तुमने देखा नहीं फलां भी धोखा देता था, फलां मस्जिद में भी इस तरह था, फलां इमाम बारगाह भी ऐसा थी, और अगर करना है तो इन लोगों के ऊपर करो, ये इनके ऊपर खर्च कर रहे, तरह तरह के वसवसे। नसुल्लाह, अल्लाह को भूले हुए होंगे, जिक्र इलाही कोई नहीं है, असलन अल्लाह का कोई खौफ, अल्लाह का जिक्र, उसकी तरफ तवज्जो कुछ भी नहीं, अपनी जॉब की ही फिक्र है, या हमारी ज़ुबान में पढ़ाइयों की फिक्र है, महफिलों की फिक्र है, वालदैन बच्चों की फिक्र है, घर बार की फिक्र है, अल्लाह की बात आए वो कहेगा ठीक है यार, ये मौजूआत बुढ़ापे के लिए हैं, तो अल्लाह भी उन्हें भूल जाएगा। फिर कुरान ने बयान किया इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, यही फासिकीन हैं, ये फिस्क व फुजूर वाले हैं। बहरहाल ये बहुत तफसीली टॉपिक है और इसी के ऊपर इख्तिताम आपकी खिदमत में किया जाता है। मुनाफिकीन के दराजात हैं, आखिर में सिर्फ ये नुक्ता बयान किया जाए, इन्हीं मुनाफिकीन मुनाफिकीन की अलामत भी हैं, मसलन एक अलामत जिस तरह नमाज में सुस्ती है, ये एक अलामत है, इसी तरह से रियाकारी करते हैं, पैसा नहीं हाथ से निकलता, अल्लाह को याद नहीं करते मगर कलील, भूले हुए हैं, इन्हीं में से एक है बुग़्ज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम रखते हैं, शिया सुन्नी दोनों में से ये सनद रवायत है। आइमा अलैहिस्सलाम या इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम आएगा तो तेवर चढ़ जाएंगे और अजीब से उन्हें बदमजगी का एहसास होगा, ये भी मुनाफिक है। लिहाजा इन सब से ऐसा नहीं है कि जिसको इमाम अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ नहीं है तो बकिया जिहाद से निफाक आके उसे नहीं घेर सकता, तो ये है। हाँ ये ज़रूर है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से कोई मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन मुनाफिक वो ये एक पहलू है, बकिया पहलू भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और आइमा अलैहिस्सलाम ने इसी तरह अलकाफ़ी में बाकायदा तफसील से बाबुल निफाक पूरा एक चैप्टर है, उसे बहुत तफसील से बयान किया है। तो ये हमारे पास मुनाफिकत का एक तारुफ था छोटा सा, और बकिया भी इसी तरह से हैं, लेकिन हम अलामात जिस तरह हर मरज़ की अलामतें होती हैं, इस तरह से इन अलामात को भी जानें और इन अलामात के ज़रिए से अपने आप को और अपने आसपास के अफराद को पहचानें और एहतमाम करें इलाज का। कुरान ने बयान किया कू व अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ और अपने अहलो आयाल को बचाओ उस आग से, जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन लोक और पत्थर हैं, यानी आग लगी हुई है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, आयत कुरानिया है, भागो अल्लाह की तरफ, आग के अंदर पड़े हुए हो तुम, दबे हुए हो, भागो, फरार करो, अल्लाह की जानिब भागो, लिहाजा ना कि इंसान गुनाहों की जानिब, ना कि गलत मेयारात की जानिब। तो ये हमारे पास निफाक का एक मुख्तसर तारुफ आता है, और निफाक के मरातब हैं। आखिरी मरातब का निफाक वो कुफ्र और शिर्क से आमेजिश रखता है और दार इस्लाम से इंसान खारिज हो जाता है। जो मतवस्त दर्जे का निफाक है इसमें तोबा की गुंजाइश है, और जो ابتدائی درجے کا نفاق ہے وہ ایمان سے نہیں ٹکراتا، اس کی ٹکراتا ایمان کے پہلے مرتبے سے نہیں ٹکراتا، اوپر کے مرتبوں سے ٹکراتا، جو بالکل ابتدائی درجے کا نفاق ہے، کہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔